संत नाभादास जी द्वारा लिखी हुई भक्तों की जीवन गाथा भक्तमाल, जिन्हें सरल भाषा में आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे अपने प्रभु जी के परम भक्त अरविंद चौधरी जी।
राधे राधे। राधे राधे। विश्वाचरित्र का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। सभी भक्तों को प्रणाम। श्री भक्तमाल के सभी भक्तों को प्रणाम। राधे राधे। विश्वामित्र जी जब 1000 साल की तपस्या कर चुके तो ब्रह्मा जी ने उन्हें ऋषि के नाम से उच्चारित किया और 1 साल की अगली तपस्या का फल खा गई उनकी मेनका अप्सरा। फिर से उन्होंने तपस्या प्रारंभ की। इस बार की घोर तपस्या की उन्होंने। घोर तपस्या करने के बाद फिर से उनके सामने इंद्र ने एक अप्सरा भेजी। ये थी रंभा अप्सरा। रंभा जी आई सामने, इनकी आंख खुली, इन्होंने देखा रंभा को। रंभा को देखते फिर से इनके मन में जैसे मोहित होना शुरू हुई। इन्हें पूर्व स्मरण हो गया कि 1000 वर्ष की हमारी तपस्या खा गई थी मेनका, ये फिर से आ गई है। तो इनका वो थोड़ा सा इन्हें क्रोध हुआ तो इन्होंने उसको कहा दृष्टि खोल के कि चली जा, नहीं तो नष्ट कर दूंगा तुम्हें, यहीं में भस्म कर दूंगा अपनी शक्ति से, भाग जाए यहाँ से। तो वो तुरंत वहाँ से भाग गई और उसने धमकी दी इंद्र को भी कि दोबारा अगर कोई भी भेजे ना इधर तो अच्छा नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं कि हम छोड़ देंगे, तो ध्यान रखना, ऐसा करके वो तो भाग गई। लेकिन इनको क्रोध आया था, तपस्या का फिर प्रभाव कम हुआ इनकी। इन्हें लगा अरे बार बार मतलब हम इतनी तपस्या कर रहे हैं, ये कोई ना कोई आके विघ्न पैदा कर देता, कभी काम कभी क्रोध। इन्होंने ये स्थान छोड़ा, हिमालय गई फिर से। हिमालय पे फिर इन्होंने तपस्या प्रारंभ की। फिर इन्होंने कठोर साधना शुरू करी, कठोर तपस्या। तपस्या करते करते बहुत साल व्यतीत हो गए और ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने इन्हें महर्षि कहा तो अब तक भी इनको ब्रह्म ऋषि नहीं कहा, महर्षि कहिए। ब्रह्मा जी चले गए, ये फिर अपनी साधना में लग गए। साधना इतनी कठोर साधना करने लगे कि इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, इवन श्वास की गति रोक ली इन्होंने। श्वास की गति रोक कर कठोर तपस्या करने लगे। ऐसी कठोर तपस्या कि वो तपस्या की साधना जैसे ही इनकी पूर्ण हुई, पूर्ण होते ही ये कुछ भोजन करते थे। जैसी एक नियम होता है तपस्या का, इतनी तपस्या करने के बाद कुछ भोजन करना है, तो निश्वास तपस्या कर रहे थे। वो पूर्ण करने के बाद कुछ इनके लिए भोजन बना हुआ था, खीर प्रसाद वरसाद था। वो ये बैठे ही थे कि इंद्र आ गया रूप बदल के। तो इंद्र जी ने आके मांग लिया सारा प्रसाद, इन्होंने जो हुआ तो सब उनको दे दिया अर्पण कि इनको आवश्यकता है। और ये फिर अपनी निश्वास फिर बैठ गए तपस्या में, सांस रोक लिए और लग गई तपस्या करने। तपस्या ऐसी कठोर तपस्या इन्होंने करी इस बार कि इनकी मस्तक से ज्वालाएं निकलना शुरू हो गई। वो ज्वालाएं, उनका ताप इतना असहनीय हो, देवताओं के लिए असहनीय हो गया कि देवता भागे स्वर्ग छोड़ के। उन्होंने ब्रह्मा जी को पुकारा बचाओ, इतनी तेज निकल रहा है उनकी तपस्या के प्रभाव से, इतना तेज निकल रहा है विश्वामित्र का। उन्होंने देखा इंद्र भी प्रकट हुए ब्रह्मा जी के सामने, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे महाराज इनमें कोई विकार बाकी नहीं है, हमने पूर्ण परीक्षा करके देख ली, इनकी अप्सराएं भेज के देख ली, सब कुछ कर दी, इनकी जो भी अभिलाषा हो पूर्ण करो, नहीं तो हम जल रहे हैं। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने इनको पुकारा ब्रह्म ऋषि कहके, उठो ब्रह्म ऋषि। बस इनके लिए इतना काफ़ी था, ये बोले वरदान महाराज, ये वरदान बहुत है हमारे लिए, ब्रह्म ऋषि बोल दिया आपने, हम ब्रह्म ऋषि हो गए, हमें ब्रह्म ऋषि बनना था, बस चलिए आप जाइए अब हम देख लेंगे। अब ये ब्रह्म ऋषि बनते ही इनके फिर वही इनके भाव कॉम्पिटिशन कि मैं भी ब्रह्म ऋषि हो गया हूँ अब, और ब्रह्म ऋषि कॉम्पिटिटर कौन है, वशिष्ठ जी, चलिए वशिष्ठ जी के पास। ये गए वशिष्ठ जी के पास मिलने। वशिष्ठ जी के पास मिलने गए तो उन्होंने हृदय से लगाया इनको, हृदय से लगाया, इनका बड़ा आदर सत्कार किया। तो इनको कहा कि आइए महर्षि। तो उनका मन फिर खटका, महर्षि, ब्रह्मा जी ने मुझे ब्रह्म ऋषि कहा है। वो बोले नहीं अभी तुम महर्षि हो, अभी तुम ब्रह्म ऋषि नहीं बने हो। उनको बड़ा बुरा लगा कि पूरा उनका सत्कार किया लेकिन इनको बड़ा बुरा लगा कि हमें ये समझ ही नहीं रहे हैं हमें। खैर उस सत्कार में इन्होंने इनके लिए जो भी इन्होंने सत्कार किया, सत्कार का ऋण चुकाने के लिए इन्होंने भी अपने आश्रम पे इनको वशिष्ठ जी को आमंत्रित किया कि आप भी हमारे यहाँ आना, हम भी आपका सत्कार करेंगे। बोला ठीक है, लेकिन अंदर द्वेष भरा हुआ था कि हमें मानते ही नहीं है, हम जीत के आ गए, सब कुछ तपस्या के प्रभाव से हमने ब्रह्मा जी का हृदय जीत लिया, उन्होंने ब्रह्मऋषि हमें कह दिया है, हम वरदान तक लेके नहीं आए। अहंकार फिर भी था इनका बाकी। क्या हुआ, जब ये वशिष्ठ जी इनके यहाँ आए तो इन्होंने भी सत्कार किया। जब ये वशिष्ठ जी ने इनका सत्कार किया था तो सत्कार के बदले इन्होंने 1000 वर्ष की तपस्या का फल सत्कार के बदले उनको दे दिया था। जो बदले में देते हैं तो बदले में इन्होंने 1000 वर्ष की तपस्या का फल दे दिया था, जाओ तुम्हें 1000। वहाँ पर भी अहंकार है, 1000 वर्ष की तपस्या हमने तुम्हें दे दी। जब वशिष्ठ जी इनके यहाँ भोजन सत्कार के लिए आए तो उन्होंने भोजन सत्कार किया विश्वामित्र जी ने। करने के बाद वशिष्ठ जी जब चलने लगे तो इनको कहा, तुम्हें हमने आधे क्षण का अपने सत्संग का प्रभाव दिया, तो इन्होंने बैठा लिया कि बोलो बैठ जाओ थोड़ी देर, आप बैठो बात करो हमसे। बोला 1000 की तपस्या, 1000 वर्ष की तपस्या का फल क्या होता है? ये बोले बहुत बहुत बड़ा फल है, बहुत, मतलब कहा नहीं जा सकता इतना फल है। बोला अच्छा, और सत्संग का क्या फल है? इन्होंने आधे क्षण नहीं पूछा, इन्होंने सत्संग का क्या फल है? ये बोले भाई सत्संग का फल तो बहुत बड़ा होता है, अब क्या बताएं, सत्संग का फल कितना बड़ा होता है भगवान जानते हैं, हम क्या बताएं। तो इनमें वही बहस हो गई कि मेरी, मैंने तो आपको दिया सत्कार के बदले 1000 वर्ष की तपस्या का फल, आप मुझे आधे क्षण का सत्संग का फल दे रहे हो, ये कोई फल है? तो वशिष्ठ जी मुस्कुराए और कहने लगे कि आपको ज्ञात नहीं है मैंने आपको क्या दिया है। वो बोलने लगे कि 1000 वर्ष की तपस्या के बराबर तो बिल्कुल नहीं है, तो इसका आप हमें रिजल्ट दीजिए कि ये कितना है, इसका निकाल के दीजिए कि कितना है, इसका फल कितना है, कोई ऐसा व्यक्ति दीजिए कि जो ये साबित कर सके। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब दोनों में तय हो गया कि बीच वाला कौन व्यक्ति ऐसा हो। तो शेष भगवान के बारे में वशिष्ठ जी ने कहा कि शेष जी से आप संतुष्ट होंगे अगर वो बता दें? बोला बिल्कुल, शेष भगवान अगर बोल दें तो मैं संतुष्ट हूँ। बोला चलो शेष भगवान के पास चलते हैं। शेष भगवान के पास गए ये पाताल में, पाताल में गए तो शेष भगवान को प्रणाम किया और दोनों ने अपना अपना निवेदन किया कि जी हम ये रिजल्ट चाहते हैं कि किसका तपस्या का प्रभाव भारी है या आधे क्षण के सत्संग का भारी है। तो इन्होंने कहा शेष जी ने कि अरे भाई मेरे ऊपर तो पृथ्वी है, मेरे फन पे पृथ्वी रखी हुई है और मैं थोड़ा सा विश्राम करूं फिर मैं सोचूंगा, ये थोड़ा मेरी पृथ्वी का भार आप ले सकते हैं कोई तुम में से? तो विश्वामित्र ने कहा हाँ मैं ले सकता हूँ मैं। उन्होंने कहा लो मेरी 1000 वर्ष की तपस्या के बल पे टिक जाए पृथ्वी। तो शेष जी बोले कि ले मैं थोड़ा फन नीचे करता हूँ, तो वो नीचे किया तो पृथ्वी नीचे ही आ गई। बोला कहाँ भाई तेरी 1000 वर्ष की तपस्या के फल पर तो ये टिक भी नहीं रही। तो इन्होंने देखा वशिष्ठ जी ने कहा कि आधे क्षण की मेरे सत्संग के प्रभाव पे टिक पृथ्वी। शेष जी नीचे से निकल आए, पृथ्वी टिकी रही। तो शेष भगवान ने कहा भाई अब कुछ बोलना शेष तो रहा नहीं अब तो ये लज्जित हो गए विश्वामित्र जी। इन्हें पता चल गया कि ओ सत्संग का प्रभाव कितना बड़ा है, भगवान नाम उच्चारण, भगवान के सत्संग का, भगवान के नाम संकीर्तन का प्रभाव कितना बड़ा है। तप का प्रभाव नहीं है इतना, एक तपस्वी थे, ये तपस्वी थे, ये भगवान के भक्त हैं वशिष्ठ जी। तो तपस्वी, ये कंपटीशन किस किस के बीच है? तपस्वी और भक्त के बीच में है। यहाँ पे पूरी तरह आश्रित भक्त भगवान पे हैं और ये अपने तपस्या के बल पे आश्रित हैं कि हम जो भी हैं हम तपस्वी हैं, हम अपने आप किया है हमने। आज इनके तपस्या का अहंकार टूट गया, इन्हें पता चल गया कि अपनी तपस्या का बल कुछ नहीं होता है, भगवान नाम संकीर्तन सब कुछ है, भगवान नाम समर्पण सब कुछ है। आज इन्हें ज्ञात हुआ, इन्हें यहाँ इनसे क्षमा मांगी और ये अपने अपने घर आ गए, अपने अपने आश्रम पे आ गए। लेकिन मन में वो द्वेष बना हुआ था अभी भी कि हमें महर्षि क्यों कहते हैं, हमें ब्रह्मऋषि क्यों नहीं कहते हैं। और लोगों से भी इन्होंने सुना, सुनते इनके मन में एक दिन इनके मन में इतना द्वेष भरा आया जब इन्होंने इधर उधर और ऋषियों से सुना कि वो तुम्हारे बारे में मानते ही नहीं, और ऋषियों ने भी आके कहा, तो इन्होंने ठान लिया कि हम उनकी हत्या ही कर देंगे, उनको मार देते हैं। और ये अपना फरसा लेकर के और अपने धनुष बाण लेकर के, अस्त्र शस्त्र लेकर के, और ये चल दिए कुल्हाड़ी वुल्हाड़ी लेकर के कि आज उनको हम निपटा देते हैं। उनके आश्रम के निकट रात में जाके बैठ गए, रात में इनको सोते हुए मार देंगे आज। रात में बैठे तो रात में अरुंधति जी जो उनकी पत्नी है वशिष्ठ जी की, वो उनसे कह रही हैं कि देखो ना कितनी चांद की कितनी मधुर चांदनी है, क्या प्रकाश है चारों तरफ, तो कितनी निर्मल चांदनी है। तो वशिष्ठ जी ने देखा बाहर, वो कहने लगे अरे वाह ये प्रकाश तो ऐसा लगता है जैसे विश्वामित्र जी के तप के बल का प्रकाश हुए क्या प्रकाश है, हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं विश्वामित्र जी तो नहीं है ना आसपास, क्योंकि इतना प्रकाश तो एक चांद की चांदनी में नहीं हो सकता। विश्वामित्र के तप के बल में इतना प्रकाश हो सकता है भाई? विश्वामित्र जी सुन रहे हैं ये बात, तो अरुंधति जी कह रही हैं कि जब आप उसको उनको इतना मानते हो तो आप उनको ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं मान लेते, महर्षि क्यों कहते हो आप उन्हें? बोले उनमें विकार है, अभी उनके अंदर विकार है शस्त्र धारण करने का, वो बात बात पे शस्त्र उठा लेते हैं। उनका ये विकार जिस दिन छूट जाएगा उस दिन वो ब्रह्म ऋषि बन जाएंगे, ये बात वो सुन रहे थे। और उनको वो बड़े लज्जित हुए, हो हम इतने बड़े महापुरुष को मारने आ रहे हैं, ये हृदय से हमें प्रेम करते हैं और हम इनको मारने आ रहे हैं। उन्होंने वही अस्त्र शस्त्र फेंक दिए और ये सीधे वशिष्ठ जी के पास गए, चरणों में गिर गए उनके, रोने लगे, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, आप इतने बड़े महापुरुष हैं कि मैं सही में आपके चरणों में गिरने के लायक हूँ। आज इन्होंने उठाया विश्वामित्र को, हृदय से लगाया कि अब ब्रह्म ऋषि आओ उठो, आज इन्हें ब्रह्म ऋषि कह के पुकारा। आज इनका सारा जो भी मलिनता थी वो सब दूर हुई, विश्वामित्र जी निर्मल हो गए, पूर्ण निर्मल। आज वशिष्ठ जी ने आलिंगन किया, आज दोनों ने एक दूसरे को प्रेम से आलिंगन किया, सारा जो भी था इनका द्वेष भाव था वो मिट गया, विश्वामित्र जी का प्रेम हुआ, एक दूसरे से आलिंगन किया और इन्होंने मान लिया कि हाँ भाई आप ब्रह्म ऋषि हैं। विश्वामित्र जी प्रसन्नता से लौट आए। तो भगवान जब श्री राम जी हुए दशरथ जी के यहाँ, तो दशरथ जी भी परशुराम जी को वैसे ही मानते थे जैसे वशिष्ठ जी को, इनको भी गुरु रूप में ही मानते थे, ऐसे ही भगवान श्री राम जी भी वशिष्ठ जी को, परशुराम जी को जैसे वशिष्ठ जी को गुरु मानते थे ऐसे ही परशुराम जी को भी मानते थे। और जी परशुराम जी भगवान श्री राम जी को लेने के लिए आए थे दशरथ जी से कि हमें अपना यज्ञ करना है, हमें निशाचर हैं, राक्षस लोग असुर हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, हमारा यज्ञ ध्वंस कर रहे हैं। वहाँ पे भी उन्होंने वो कहा था कि ख़त्म तो हम भी कर सकते हैं इनको, अपनी एक हुंकार से ख़त्म कर देंगे, पर हमारी तपस्या के बल नष्ट हो जाएंगे, जैसे पहले वशिष्ठ जी कहा करते थे कि ख़त्म तो हम भी कर देंगे पर हमारी तपस्या का बल नष्ट हो जाएगा। तो ये नहीं, स्वयं नहीं करना चाहिए, जब भगवान हैं स्वयं अवतार ले चुके तो हम कहाँ को ये सब करें, अहंकार नष्ट हो गया ना, अब क्यों हम क्यों करें, ये तो भगवान के कार्य हैं, भगवान कर लेंगे। तो भगवान श्री राम जी आए और भगवान राम जी ने उन सारे असुरों को मारा और विश्वामित्र जी ने इनको सारे अस्त्र शस्त्रों की विद्याएं दी भगवान श्री राम जी को। फिर भगवान श्री राम जी को लेकर के ये जनकपुरी गए, जनकपुरी में माँ सीता के साथ में फिर स्वयंवर हुआ, उस समय भी विश्वामित्र जी थे, दशरथ जी ने भी विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया, विवाह संपन्न हुआ और ऐसे ही गुरु रूप में ही सब विश्वामित्र जी को भी मानते रहे और वशिष्ठ जी को भी। तो दोनों ही ब्रह्म ऋषि हैं और आपने भक्ति का प्रभाव देख लिया है कि कितनी भी बड़ी तप कर लें आप, तप में अहंकार होता है, ये करते तपस्या क्या है, ये कर्मकांड मार्ग, जो कर्म मार्ग है, कर्म जब तक निष्काम नहीं बनेगा तब तक उसमें अहंकार रहेगा, अगर वो निष्काम है, निष्काम बनते ही वो भक्त भक्ति बन जाती है, निष्काम बनते ही वो भक्ति बन जाएगी। तो इसलिए वेद में तीन मार्ग बताए गए हैं भगवत प्राप्ति के, वेद में पूर्णतः तीन ही मार्ग हैं और जितने भी चराचर में जितने भी धर्म हैं वो सब तीन मार्गों पर ही डिपेंड हैं, उन्हीं के भाग हैं अलग अलग, पहले भी बताया था हमने, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, उपासना मार्ग यानी भक्ति मार्ग। तो तीनों मार्गों पे ही सारे के सारे कहीं ना कहीं धर्म टिके हुए हैं, तीनों मार्गों को उन्हीं के अलग 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 उन्हीं के विभाग हुए हैं, उन्हीं के विभाग हैं। तो गीता में भी इन्हीं तीनों मार्गों का व्याख्यान भगवान श्री कृष्ण जी किया, फिर वो दो हो गई, तीन में से दो हो जाते हैं, क्योंकि कर्म मार्ग अगर निष्काम कर्म को ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग में पूर्णतः अहंकार होता है क्योंकि अपने खुद से करना होता है सब, जो खुद से करना होता है तो वहाँ कहीं ना कहीं अहंकार प्रकट होगा, जब तक अपना अहंकार अपना मैंपन नहीं मरेगा तो तब तक मनुष्य भगवान को प्राप्त करना तो बड़ा मुश्किल होता है। उसी प्रकार कर्म मार्ग में भी तपस्या का अभिमान हो जाता है, जो भी कर्म करता है जितने भी कर्मकांड करेगा उसमें मैंपन आ जाता है कि ये मैंने किया है तो मैं मुझे मिलना चाहिए, मेरा ये प्रभाव है तो मुझे मिलना चाहिए, तो मुझे मिलना चाहिए मैं आता है। लेकिन जब यही कर्म निष्काम हो जाता है, भगवान के निमित्त हो जाता है, ये भगवान कहते हैं ना गीता के 12वें अध्याय में भी योग निष्काम कर्म योग है कि भगवान दूसरे अध्याय से लेके भी भगवान 12वें तक ये निष्काम कर्म योग के बारे में बीच बीच में जहाँ जहाँ बोल रहे हैं, तो निष्काम कर्म योग भक्ति बन जाता है। और 12वां अध्याय गीता जी का भी भक्ति मार्ग का पूरा भगवान ने यही बताया है कि जब वो सब कुछ मुझ में समर्पण कर देता है तो भगवान मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो जाता है मेरा भक्त, तो ये भक्ति का प्रभाव है। तो भगवान से यही प्रार्थना करें कि उनकी निष्काम भक्ति प्राप्त हो, भगवान के संतों में प्रीति हो, भगवान के संतों का चरणामृत मिले, उनकी चरण रज प्राप्त हो। हरिशरणम 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 राधे राधे।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।